आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। मछली के गर्भ से जन्म होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। लोग उसे मत्स्य गंधा के नाम से ही जानते थे और उसके आसपास जाने से बचते थे। इसीलिए मत्स्य गंधा निषाद समाज में भी एकदम अकेली पड़ गई थी। अपने इस अकेलेपन के जीवन से दुखी होकर मत्स्य गंधा सबसे दूर दूर रहकर नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराने का काम करने लगी थी। ये भी सच है कि उसके शरीर की गंध के कारण सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो उसकी नाव में चढ़ते थे। एक दिन सूर्यास्त के समय मत्स्य गंधा अपनी नाव को किनारे बांधकर घर जाने ही वाली थी, इतने में वहां महर्षि पराशर आ जाते हैं। उन्हें यमुना पार जाना था। वहां और कोई दूसरी नाव न होने के कारण महर्षि पराशर ने मत्स्य गंधा से ही नदी पार कराने को कहा। सूर्यास्त होने ही वाला था, फिर भी मत्स्य गंधा ने महर्षि पराशर को ना नहीं कहा। वो उन्हें नाव में बिठाकर नदी पार कराने के लिए चल पड़ी। नाव अभी बीच नदी में थी और इतने में अचानक मौसम बदलने लगा। न जाने कहां से घनघोर बादल उमड़ने लगे, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ऐसी हालत में उफान भरी नदी के बीच में मत्स्य गंधा की नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। तब उसे सामने कुछ दूर पर एक छोटा सा टापू दिखाई पड़ा। मत्स्य गंधा ने अपनी नाव को उस टापू पर ले जाकर रोक दिया। सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छाने लग रहा था। बारिश में पूरी तरह भीग चुके महर्षि पराशर खुद आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि ऐसे में उनके मन में न जाने कैसे वासना जाग उठती है। महर्षि पराशर को उस समय आसमान में ग्रहों का एक महान ज्योतिषी संजोग बनता हुआ दिखाई पड़ा। ज्योतिषाचार्य महर्षि पराशर उन ग्रहों के योग को देखकर सब कुछ जान गए। ऐसे में उन्होंने मत्स्य गंधा की ओर देखा और उससे कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी पर किसी महान आत्मा के आने का संयोग बना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे रतिदान करोगी? महर्षि की बात सुनकर मत्स्य गंधा चौंक पड़ी। उसने कहा, मेरे शरीर से तो मछली की गंध आती है, आप मेरे साथ कैसे समागम कर पाएंगे मुनिवर?
महर्षि पराशर ने अपने कमंडल से जल लेकर उसे मंत्र से शुद्ध करके जैसे ही मत्स्य गंधा के शरीर पर छिड़का, उसके शरीर से मछली की गंध आना बंद हो गई। उसके शरीर से मन को मोह लेने वाली सुगंध आने लगी। ये ऐसी सुगंध थी जो एक योजन लगभग 8 किलोमीटर तक महसूस की जा सकती थी। तभी से मत्स्य गंधा का नाम योजन गंधा पड़ गया था। महर्षि पराशर ने तब योजन गंधा के साथ समागम किया। समय आने पर योजन गंधा ने एक बेटे को जन्म दिया, जो जन्म के कुछ देर बाद ही 12 वर्ष के बालक की तरह बड़ा हो गया था। उसे जन्म से ही वेदों का पूरा ज्ञान था। महर्षि पराशर और योजन गंधा सत्यवती के इस बेटे को आगे चलकर वेद व्यास के नाम से जाना गया। एक द्वीप पर जन्मे होने और उनके सांवले रंग के कारण वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपन पड़ा था। समागम के बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को दोबारा कन्या भाव प्रदान कर दिया था। महाराज शांतनु सत्यवती को अब ना पाकर बहुत दुखी रहने लगे थे। उनका कोई भी उपाय उन्हें सत्यवती को भुलाने में उनकी मदद नहीं कर रहा था। उनकी इस हालत को जब बेटे देवव्रत ने देखा तो पहले पहल तो युवराज देवव्रत को पिता की इस हालत पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि आश्चर्य ही हुआ। देवव्रत ने पिता से उनकी इस हालत का कारण पूछा तो महाराज शांतनु ने उत्तर दिया कि मैं तो अब दिन प्रतिदिन बूढ़ा और कमजोर ही होता जाऊंगा, तुम तो एकमात्र बेटे हो मेरे, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे वंश का क्या होगा? यही सोच सोच कर मैं बहुत चिंतित हुआ जाता हूं। देवव्रत पिता के इस उत्तर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे अपने पिता को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को पिता के दुख का असली कारण जानने के काम में लगा दिया। अपने मंत्रियों और गुप्तचर सूत्रों की मदद से देवव्रत ने पिता शांतनु के दुख का असली कारण जान लिया। कारण केवल इतना ही नहीं था कि महाराज शांतनु दासराज की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, बल्कि इस विवाह के बदले में दासराज ने महाराज शांतनु से जो वचन मांगा था वो ज्यादा चिंताजनक और दुख भरा था। इसलिए देवव्रत स्वयं दासराज से मिलने चले गए। दासराज से मिलकर देवव्रत ने बड़ी सहजता से उनसे पूछ लिया कि
दासराज को अपनी बेटी का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु के साथ हो जाने और सत्यवती का हस्तिनापुर की महारानी बन जाने की प्रसन्नता क्यों नहीं है?
देवव्रत की बात सुनकर दासराज ने कहा कि सत्यवती जिन राजा की बेटी है वह आपसे किसी भी रूप में छोटे नहीं है। उनका भी यही आदेश था कि सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने देववर्षीय सिद्ध, जो कि बहुत पहले से ही सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, उन्हें भी मना कर दिया था। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं उसके पिता जैसा ही हूं। इसीलिए मेरी ये मांग है कि सत्यवती का बेटा ही आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बने।
दासराज की बात सुनकर देवव्रत कहते हैं कि
मैं वचन देता हूं कि देवी सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा।
इस पर दासराज का कहना था कि आप पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन आगे आने वाले समय में आपके बेटे सत्यवती के बेटे से हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं छीन लेंगे, इस बात को मैं कैसे मान लूं?
अब देवव्रत के लिए परिस्थिति दुविधा भरी हो गई थी। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे दासराज को कैसे भरोसा दिलाएं। इसीलिए अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत ने सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर दासराज के सामने ये प्रतिज्ञा कर ली कि
मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।
ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी देवी देवताओं ने देवव्रत का नाम आज से भीष्म होगा ऐसा कहा था। देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा से आखिर दासराज को पूरा भरोसा हो गया। तब देवव्रत देवी सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए और उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। पिता की प्रसन्नता के लिए बेटे का ऐसा त्याग देखकर महाराज शांतनु इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे को ये अनूठा वरदान दे दिया था कि वो जब तक चाहेगा मृत्यु उसकी इच्छा के बिना उसे छू भी नहीं पाएगी। हस्तिनापुर की रानी बनने के बाद सत्यवती ने दो बेटों को जन्म दिया। एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम विचित्र वीर रखा गया। दोनों ही राजकुमार बड़े होनहार, पराक्रमी और बलशाली थे। लेकिन अभी बड़ा बेटा चित्रांगद युवा भी नहीं हो पाया था कि एक दिन अचानक महाराज शांतनु चल बसे। इस तरह स्वर्गलोक के राजर्षि महाभीष यानी महाराज शांतनु आखिर इस जीवन से मुक्त हुए थे।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।